इति इस प्रकार जैसा पहले अध्याय में है इसके पूर्व अध्याय में श्री प्रहलाद महाराज बोले हैं और प्रहलाद महाराज के बाद ब्रह्मा जी बोलना चाहते थे लेकिन बीच में श्रीमती विंध्यावली बोलने लगी। विंध्यावली बलि महाराज की धर्मपत्नी है तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मा जी के बोलने के बाद इति उक्तवंतम पुरुषम पुरातनम, सनातन पुरुष भगवान बोल रहे हैं। आपने सुना था कल थोड़ा व्याख्या इसकी हुई थी लेकिन कम हुई थी। भगवान क्या क्या बोले, पहले प्रहलाद महाराज बोले। प्रहलाद महाराज ने कहा कि आपने इसे इंद्र पद दिया था, स्वर्ग दिया था और छीन लिया, दोनों अच्छा है। जितना देना अच्छा है उतना ही छीन लेना अच्छा है। क्यों छीन लेना अच्छा है, इस पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये धन ऐसा है कि इसके मद से व्यक्ति अंधा हो जाता है। आपने छीन लिया, अच्छा किया। ये बात सुन करके विंध्यावली घबरा गई, वो आ गई ब्रह्मा जी से पहले बोलने के लिए। ब्रह्मा जी बोलना चाहते थे लेकिन वो बोलने लगी, हे प्रभु, इस संसार की रचना आपने किया है, आप पालन करते हैं, आप सबका संहार करते हैं। इस संसार में जो भी वस्तु है सब आपकी है। कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि हमारा शरीर है? शरीर हो या चाहे शरीर से भोगे जाने वाला कोई पदार्थ हो, सब आपका है, आप दिए हैं। तो ये कहने में लज्जा नहीं आती है कहने वाले को कि मैं अपना शरीर दे सकता हूँ, अपना वचन पूरा कर सकता हूँ। तब बाद में ब्रह्मा जी बोले विंध्यावली के बाद, हे जीवों को जन्म देने वाले, हे जीवों के अधिपति, देवताओं के आराध्य देव, आप जगन में हैं, मुन चैनम हृत सर्वस्वम, आपने बलि का सब कुछ ले लिया, सर्वस्व ले लिया, अब इसको मुन चम, इसको छोड़ दीजिए, वरुण पास से खोल दीजिए। नायम अरहति यातनाम निग्रहम, अब अधिक दंड मत दीजिए, यह दंड का पात्र नहीं है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कृतस्ना ते अनेन दत्ता भू, इसने आपको संपूर्ण पृथ्वी दान कर दिया और इसके साथ लोक भी, स्वर्ग आदि लोक जो इसने जीता था, यज्ञ करके कमाई किया था, उसको इसने अर्पित कर दिया, स्वर्ग पाताल आदि सब। निवेदितम च सर्वस्व, अपना सब कुछ अर्पण कर दिया और अर्पण किया बहुत प्रसन्न मन से, कोई भार मान करके नहीं। जिनके चरणों में तुलसी दल, छोटा फूल या जल अर्पित करके कोई व्यक्ति वैकुंठ प्राप्त कर लेता है और उन्हीं को जिसने सब कुछ दे दिया, सारा भूमंडल दे दिया, स्वर्ग पाताल आदि सब कुछ दिया, इसी के अंदर सारी वस्तुएं हैं, तो सब कुछ अर्पण करके यह व्यक्ति दंड का कैसे पात्र है? इसे आप जल्दी खोल दीजिए। यह सुन करके पुरातन पुरुष बोलते हैं। पुरातन पुरुष से मतलब है सनातन पुरुष, जो सदा से हैं और सब सब समय आगे रहेंगे। वे है सनातन पुरुष, वे सबसे पुराने हैं, सबसे पहले के हैं, लेकिन नित्य किशोर रहते हैं, नवजौवन में रहते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च, बिल्कुल देखने पर भगवान को ऐसा लगता है कि अब किशोर अवस्था पार किए, जवानी अभी चढ़ी नहीं है, अब जवान हो रहे हैं, इसको नवजौवन कहते हैं, जवानी की नई अवस्था, सबसे पहले के हैं अनादिकाल से, लेकिन उन पर तो कोई काल का प्रभाव है नहीं, वो नित्य फ्रेश नित्य जौवन में है। आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च, ऐसे श्री भगवान वामन देव के रूप में उपस्थित हैं, तो वे ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी घबरा गए थे, ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि यदि भगवान की ये लीला संसार में लोग जानेंगे तो भगवान पर अविश्वास करेंगे कि भगवान भक्तों को सताते हैं, तो ये ठीक नहीं है, इसको खोल देना चाहिए, ब्रह्मा जी ने कहा था। इस पर उत्तर दे रहे भगवान, ब्राह्मण जमन उगृहणामी तद विश्व विधुन में हम, ब्रह्मा जी मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ, उसका धन छीन लेता हूँ, जन मदह पुरुष स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते, जिसके मद से व्यक्ति घमंड में हो जाता है और अपने सामने किसी को समझता नहीं, वो सबका अपमान करता है, सब लोगों का अपमान करता है, और माम च यहाँ तक कि मेरा भी अपमान करता है, अतिशय धनी आदमी भगवान को भी कुछ नहीं जानता है और जगत के लोगों को क्या जानेगा, इसीलिए मैं इसका धन छीन लिया। भगवान सिद्धांत बताते हैं, जदा कदाचित जीवात्मा संसरण, यह कर्म भी इस संसार में जीवात्मा जीव भटक रहा है अपने कर्म के अनुसार विविध योनियों में, और अनीशा प्रतंत्र रहता है, जीव की दशा है अनेक योनियों में शरीर बदलता रहता है, और बहुत मुश्किल से बहुत सौभाग्य से इसको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। जदा कदाचित जीवात्मा संसरण निज कर्म भी नाना जोनिस्व अनिस्वयं पौरुषीम गतिम आवजेत, तो नाना योनियों में भटकने के बाद इसको पौरुषीम तनुम मनुष्य का शरीर दिया जाता है, प्राप्त करता है। तो नाना शरीर प्राप्त करता है अपने कर्म से, लेकिन मनुष्य शरीर अपने कर्म से नहीं मिलता है इसको, ये मैं कृपा करके देता हूं। तो मनुष्य शरीर में जन्म ले करके जन्म कर्म वायो रूप विद्य स्वर्ज धनाद भी उच्च वंश में जन्म और बड़ा बड़ा कर्म, जवानी रूप सौंदर्य और ऊंचा पद ऐश्वर्य पा करके भी और धन पा करके भी यदि इसको अभिमान नहीं होता है जिस जीव को, ते समझिए कि मेरी कृपा है, मद अनुग्रह। इस संसार में घमंड हो ही जाता है, कारण भगवान बता रहे हैं। एक तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से, जिसका जन्म ऊंचे वंश में हुआ है, विशेष करके ब्राह्मण में जन्म हुआ है या क्षत्रिय में जन्म हुआ है या बहुत धनी वैश्य के यहाँ जन्म हुआ है, तो जन्म के कारण और कर्म के कारण, वे बहुत बड़ा कर्म किया तो उसके चलते भी अभिमान होता है, अभिमान हो जाता है। वयो, वयो मतलब जवानी, जवानी के मद में व्यक्ति बहुत अभिमानी हो जाता है। जो शरीर जवान हो तो वह कुपथ पर जाता ही है। जितने पाप होते हैं सब जवानी में होते हैं, शराब पीना, वेश्यागमन करना, जुआ खेलना, ये सब जवानी में व्यक्ति करता है। जो भगवान बता रहे हैं कि जो जवान होने पर भी, धनी घर में जन्म लेने पर भी, पवित्र ब्राह्मण में जन्म लेने पर भी, यदि उसको अभिमान न हो तो ये समझिए कि उस पर मेरी कृपा है। धन छीन लेना ये सबके लिए कृपा नहीं है भगवान की, धन का उपयोग करना ये बड़ी भारी कृपा है भगवान की। बलि महाराज के लिए कह रहे हैं कि इस पर मैं कृपा किया, धन इसका छीन लिया, तो ये मेरी दया है, मेरी कृपा है। इस भक्त को मैं पतन से बचाना चाहता था। भगवान सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन भक्त में थोड़ा भी दोष देखते हैं तो उसको नहीं सहते हैं, तुरंत दोष को निकालना चाहते हैं। बड़े भक्त में भी यदि छोटा सा दोष हो तो उसको वे नष्ट करते हैं। उनको ये पसंद नहीं है कि भक्त में थोड़ा भी दोष हो। इस संसार में सबसे बड़े भक्त हैं नारद जी। एक बार नारद जी को अभिमान हो गया तो भगवान ने उनका अभिमान तोड़ दिया, उनको पसंद नहीं था। एक बार नारद जी हिमालय में गंगा जी के तट पर ध्यान करने लगे भगवान का। उनको स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी का मन सहज ही पवित्र है, स्वभाव से ही, उसमें कोई मल नहीं है। तो उन्होंने भगवान का ध्यान करना चालू किया तो मन लग गया पूरा, संसार को भूल गए, भगवान के छवि में मन अटक गया। बहुत देर तक ध्यान करते रहे। इस ध्यान की अवस्था को देख करके इंद्र को भय हो गया कि नारद जी हमारा पद चाहते हैं, इसीलिए ध्यान कर रहे हैं। जो जैसा होता है वैसा सोचता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पर लिखते हैं कि सुख हार लय भाग सठ स्वान निरख मृगराज। जैसे सुखी हड्डी लेकर के कुत्ता चुस रहा हो तो कहीं दिखाई पड़ जाए उसको सिंह है तो वो भय करेगा कि ये सिंह हमारा हाड़ मत छीन ले। जो सिंह बड़े बड़े जानवरों को, हाथी तक को मार देता है और बिल्कुल ताजा मांस खाता है, उस सिंह में शंका करे करता है कुत्ता कि हमारा हाड़ न छीन ले। उस हड्डी को ले करके भागता है इधर सिंह के डर से। तो ऐसे ही नारद जी जो बैकुंठ में रहने वाले हैं, जाते हैं बहुत दिव्य आनंद में रहते हैं, भगवान की भक्ति के आनंद में, और इंद्र को शंका हो गई कि ये हमारा हाड़ छीनना चाहते हैं। मतलब स्वर्ग छीनना चाहते हैं, स्वर्ग के लिए तपस्या कर रहे हैं। सुना सिर मन महुअस त्रासा चहत देव ऋषि ममपुर वासा। देव ऋषि देवर्षि नारद जी हमारे लोक में वास चाहते हैं। अरे तुम्हारे सुखी हड्डी को क्यों चबाना चाहेंगे? कोई सिंह है सुखी हड्डी को नहीं चबा सकता है, पर कुत्ते को भय होता है देख करके कि हमारा हार ना ले ले। तो श्री तुलसीदास जी देवर्षि नारद जी को सिंह कह रहे हैं और इंद्र को कुत्ता जो सूखा हार चबाता है। इंद्र को आनंद है स्वर्ग में, केवल अप्सराओं के साथ विहार करने में, विमान पर घूमने में, और अनेक बगीचे हैं स्वर्ग में, नंदन वन आदि, उसमें वो घूमते हैं। तो वो सोचते हैं कि यही आनंद है, हमारा ये आनंद छीन न जाए, नारद जी न ले लें। तो वे तुरंत कामदेव को भेज दिए नारद जी के पास। कामदेव, उसको बड़ा अभिमान था, वो सोचा कि मैं नारद जी का ध्यान तोड़ दूंगा। वो बहुत सी स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर के आया, तो वे नाचने लगी और बसंत कालीन हवा को भी लेकर आया। बसंत में बहुत मंद समीर चलता है, खास करके मलय पर्वत से चंदन की सुगंध लेकर बहता है। तो हवा बहुत सुगंधित लेकर के, अप्सराएं लेकर के कामदेव आया और नारद जी के पास तान तरंग सब चालू हुआ, गीत चालू हुआ। बहुत सी अप्सराएं गा रही थी, अपने पैरों में नुपुर बांधी थी, और कामदेव अपने बाण से मार रहा था नारद जी के हृदय पर, लेकिन नारद जी का ध्यान टूटा नहीं। कामदेव बहुत अभिमान में था, वो पहल सोचा कि मैं ध्यान नारद जी का ध्यान तोड़ दूंगा, मैं पहले शिव जी का ध्यान तोड़ा था। शिव जी का ध्यान उसने इस तरह से तोड़ा, जब बहुत तान तरंग किया, अपना प्रभाव विस्तार किया, तो शिव जी का ध्यान टूटा, परंतु वो क्रोध आ गया शिव जी को, और तुरंत क्रोध से देख दिए कामदेव को, वो जल कर राख हो गया। फिर किसी प्रकार से वो जीवित हुआ, फिर भी उसको याद ये बात थी कि मैं शिव जी को क्रोधित कर दिया था। शिव जी में काम बसना तो नहीं आई, लेकिन काम से भी प्रबल क्रोध आ गया, जलाकर भस्म कर दिया। और कामदेव यहाँ नारद जी के पास हार गया, पर नारद जी ने प्रसन्न मन से देखा उसको, और रोने लगा कि हमको हमारा विनाश फिर न कर दें। नारद जी एक ब्राह्मण हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, उसको भय हुआ कि हमारा प्रभाव तो इन पर नहीं चला, अब हमारा नाश ना हो जाए, साप दे देंगे। लेकिन नारद जी आंखें खोले देखे सबको, उनको कोई क्रोध नहीं था। उसने कहा, स्वागत है कामदेव, कोई बात नहीं, जो तुम्हारा स्वभाव है तुमने किया, लेकिन तुम जा सकते हो। सारी स्त्रियां और कामदेव लज्जित होकर के चले गए, और नारद जी को बहुत बड़ा अभिमान हो गया कि मैं काम को जीता हूँ, जीता काम अहम इति मनमाहि, अहम काम, मैं काम को जीत लिया, ये बड़ा अभिमान हो गया। जो सारे जगत का विजेता है, सबको अपने बस में रखता है, उस काम को मैं जीत लिया। नारद जी विचार करने लगे, हो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं काम को जीत लिया। इसी काम के बस में ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी इतने कामातुर हो गए अपनी कन्या के सौंदर्य को देखकर और उसे आलिंगन करने के लिए दौड़े। वो भागी पशु बन करके, हरिणी बन करके, और ब्रह्मा जी इतने विवेकहीन हो गए कि वे भी हरिण बन करके उसके पीछे चले। उनके पुत्रों ने, जिसमें मरीचि मुख्य थे और दक्ष, इन लोगों ने ब्रह्मा जी को कहा, पिताजी ऐसा किसी ब्रह्मा ने नहीं किया है, आप यह काम मत कीजिए। तब उनको ज्ञान हो गया तुरंत। वो सोचे ये बुरा विचार मेरे भीतर आ गया, तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब अपना मनोभाव बदल लिया। भगवान का स्मरण करके वो शुद्ध हो गया, लेकिन काम का प्रभाव उन पर भी हो गया। नारद जी ने सोचा यही काम एक बार सिद्धाश्रम के पास, बक्सर के पास एक बहुत बड़े मुनि की पत्नी से इंद्र का संयोग करा दिया। इंद्र इस पृथ्वी पर की मानवी की प्रशंसा सुन करके, वो ब्राह्मण की पत्नी थी, गौतम ऋषि की पत्नी, उसके साथ संग करने के लिए चले आए, स्वर्ग से आए और गौतम मुनि का वेश धारण करके उनकी पत्नी के साथ बलात्कार किए। बाद में जब पता चला उस ब्राह्मण को, तो उन्होंने श्राप दे दिया अहिल्या को कि तुम बिल्कुल पत्थर बन करके हो जाओ। वो पत्थर बन गई थी। भगवान राम के चरण कमल की धूली से वो पवित्र हुई। तो इस प्रकार का महाप्रभाव काम का है। एक ब्राह्मण पत्नी के साथ इंद्र संग किए। सारा संसार काम के अधीन है, काम सबको नचा रहा है। तो नारद जी को इसका अभिमान हो गया कि ऐसे दुर्धर वीर को मैं जीत लिया। तब ये वहां से ध्यान टूटने के बाद गए केदारनाथ, भगवान शिव से भेंट हुई। शिव जी ने पूछा कि क्या हाल चाल है, तो नारद जी ने कहा बहुत अच्छा है, मैं आपकी कृपा से कामदेव को जीत लिया। तो भगवान शिव देखे कि बहुत बड़ा अभिमान हो गया है, तब तो वे समझाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, महेश्वर शिव जी सिखाए कि ऐसी बात मत कहिएगा, कभी भगवान विष्णु से चर्चा भी चले तो बात छिपा लीजिएगा, मत बताइएगा। तब तो नारद जी के मन में दुर्भावना हुई कि ये काम को नहीं जीते, काम इनको क्रुद्ध कर दिया है, इसीलिए हमारे प्रभाव से जस से जल रहे हैं। तो वे तुरंत गए बद्रिकाश्रम में भगवान के पास, और भगवान ने कहा, अपने आप कहा, मैं सुना हूँ आपने काम को पराजित कर दिया है। तो कहते हैं अभिमान में नारद, सब आपकी कृपा है, हमें क्या है, आपकी कृपा जिस पर होती है वो कुछ भी कर सकता, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कृपा सिंधु मन देख विचारी, उर अंकुरई अंकुरई गर्भ तर भारी। भगवान ने देख लिया कि इनके हृदय में घमंड का वृक्ष अंकुरित हो गया है, तो मैं शीघ्र ही इसको उखाड़ कर फेंक दूंगा। इसके बाद नारद जी चले वहां से कीर्तन करते हुए, तो भक्त तो है ही, तो बीच रास्ते में ही भगवान ने एक नगर की सृष्टि किया माया से, आज भी उसको श्रीनगर कहते हैं। उत्तराखंड में एक छोटा शहर है, उसका नाम है श्रीनगर, उसी समय का नाम बना। माया ने बहुत सुंदर नगर बनाया, तो नगर देखे नारद जी तो उनके मन में इच्छा हो गई जरा नगर में चले। बहुत अच्छी उसकी चहरदीवारी थी, उसके आसपास बड़े सुंदर बगीचे थे, भंवरे गुनगुना रहे थे, बहुत फूल खिले हुए थे। तो नारद जी गए उस नगर में, राजा को पता लगा कि शील निधि नाम था राजा का, वो बड़े बाजा गजा के साथ नारद जी का स्वागत किए। बड़ी खुशी हुई कि हमारे नगर में श्री नारद जी जैसे महापुरुष आए हैं। तो नगर की शोभा को देख करके श्री नारद जी आकर्षित हो गए, तो देखने लगे सब चीजों को, भगवान का ध्यान टूट खत्म हो गया। तो राजा के मन में इच्छा हुई, उनकी एक कन्या थी परम सुंदरी, तो वो विवाह के योग्य हो गई थी। तो उनके मन में विचार आया कि सर्वज्ञ नारद मुनि से ही इसके भाग्य भविष्य की बात पूछ लें, इतना बड़ा ज्योतिषी कहाँ मिलेगा। तो वे ला करके बच्ची को प्रणाम कराए, कन्या को, तो उसे देख करके मुनि का वैराग बिल्कुल खत्म हो गया, वो उसी पर देखने लगे। देख रूप मुनि विरति विसारी, देखने लगे ध्यान से। तो राजा ने पूछा कि महाराज आप इसके बारे में बताइए, इसका विवाह करना है, कहाँ करना उचित होगा, इसके भाग में क्या है, कौन वर मिलेगा। नारद जी हाथ देखे, उन्होंने ये देखा, उनको गलती से दिखाई पड़ा कि जो व्यक्ति इसके साथ विवाह करेगा वो सबसे श्रेष्ठ होगा। तो उसका भाव यह था कि जो सबसे श्रेष्ठ है वही विवाह करेगा, लेकिन वो समझ लिए कि विवाह जो करेगा वो श्रेष्ठ हो जाएगा, वो सारे संसार को अपने अधीन कर लेगा। तो उनके मन में इच्छा हो गई कि मैं ही क्यों नहीं इसके साथ विवाह करूं। तो वे भागे नगर से, फिर जा गए वन में हिमालय में, तो सोचे कि हमारा हितैषी भगवान के अलावा कोई नहीं है, तो हमारा विवाह भगवान ही करा देंगे, ये वे सोचे। तपस्या करने लगे, फिर भगवान प्रकट हो गए, तो कौतुकी है, प्रकट हुए, क्या नारद जी क्या जरूरत पड़ गई। तब नारद जी ने कहा ऐसी ऐसी बात है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन आप हमारे प्रभु हैं, मैं इस साधु के रूप से, जटा से, तुमड़ी से मोहित नहीं कर पाऊंगा लड़की को, और अभी उसका स्वयंवर होने वाला है, इसलिए आपसे मैं विनय करता हूँ, आप अपना रूप दे दीजिए जो कोटि कामदेव से भी अधिक सुंदर है, उसको दे दीजिए, और उपाय से मैं नहीं पा सकूंगा, यही उपाय है, तो आप अपना रूप दे दीजिए। तो भगवान ने देख लिया कि इनके भीतर काम वासना बहुत बड़ी है, तब उनके अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान उनको बानर बना दिए, बानर का मुख, अपना मुख तो देख नहीं रहे थे, और स्वयंवर में जाकर के बैठ भगवान शिव के दो पार्षद भी उनके पीछे पीछे गए थे। तो नारद जी उस सभा में बैठे थे बानर का मुंह लेकर के, तो लड़की देखती थी नारद जी को, ये बानर का मुंह लिए हुए साधु बैठा है, तो फिर उधर से वो मुख मोड़ लेती थी। तो नारद जी के मन में ऐसा होता था कि हमको देख ही नहीं है, इतना सुंदर शरीर, पीताम्बर, भुजा और सब देख रहे थे, लेकिन अपने मुंह को तो देख नहीं रहे, तो हमको नहीं देखी है। तो फिर वहां ऐसे ऐसे बैठ रहे थे, भगवान शिव के पार्षद कह रहे थे अभी उसकी दृष्टि नहीं पड़ी है आप पर, जहां मुड़ता है रास्ता मुड़ रहा है वहां बैठिए, ध्यान देगी। वो खूब हंस रहे थे, लेकिन नारद जी नहीं समझ रहे थे। उस सभा में आए भगवान राम के रूप में, विष्णु भगवान, और कन्या ने जयमाल डाला, बरमाला डाला भगवान को। वो तो उनकी माया थी, उसको ले करके चले। अब नारद जी को इतना क्रोध हुआ भगवान पर भी और शिव जी के पार्षदों पर भी, इतना मजाक उड़ाए वो लोग, इसलिए वो लोग को साप दिए, तो क्रोध भी हुआ, खूब क्रोध। अरे तुम दोनों राक्षस हो जाओ, राक्षस तो हो ही गए, उनका तो वचन बहुत प्रमाण है ना, जो कह देते हैं नारद जी वो हो ही जाता है। इसके बाद रास्ते में जा रहे थे तो देखे कि उसी कन्या की विदाई करा करके भगवान जा रहे हैं। तब नारद जी क्रोध में बड़बड़ाने लगे, कहने लगे अरे तुम हमेशा से ऐसे ही हो, ऐ विश्वासघाती, जब तुमको हमें कुरूप करना था तो बाद में बात छोड़ दिया। भगवान शिव के पार्षदों ने कहा अंत में कि जरा अपना मुख दर्पण में देख लीजिए ध्यान से, तो देखे तो बिल्कुल बानर, तो शिव के पार्षदों पर बहुत क्रोध किए, साप दिए राक्षस होने का। और बीच में भगवान जब मिले तो भगवान को गाली देना चालू किया, तुम हमेशा से ऐसे ही हो, तुम्हारा आज का स्वभाव नहीं है, इतना हम भजन किए और हमको बानर बना दिया, उसी समय क्यों नहीं बता दिया हमको कि बानर का मुंह दे रहा, मैं सावधान रहता। लेकिन मैं तो उस सभा में आराम से बैठा था, फूला था कि मुझको ही जब बरमाला मिलेगी और तुम कन्या को हर लाए, जैसे आज मैं रो रहा हूं पत्नी के लिए ऐसे तुम भी रोओगे। भगवान राम को साप दिए। बहुत बात बोले कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही है। उस समय जब अमृत मंथन हो रहा था समुद्र में, तो शिव जी को बौरा दिया, पागल बना दिया और ले जाकर के जहर दे दिया। मथत सिंधु रुद्रही बौराय सुवर्ण प्रेरी विषपान कराए, देवताओं से भेज करके विष पिला दिया, और वो बौराहा शिव जी वो विष पी गया। विष कहीं पिया जाता है, लेकिन वो विष पी गया, मति नष्ट थी तभी ना वो बौराहा हो गया था। बुड़बक शिव जी वो विष पी गया। तो शिव जी को इतना बेवकूफ बनाया तुमने, शिव जी को विष दे दिया। असुर सुरा विष शंकर हैं, असुरों को तो शराब दे दिया, बारूणी मदिरा, वो स्त्री के रूप में था, बारूणी मदिरा वो दे दिया असुरों को, और आप रमा मणिचार और अपने ले लिया लक्ष्मी जी को और कौस्तुभ मणि को। तुम्हारा हमेशा का स्वभाव है ठगने का, दूसरों को बेवकूफ बनाने का। तब हद कर दिया, अब तुम अच्छा घर में बांध दिया, अब मेरे साथ वही काम किया तो मैं तुमको सिखा करके रहूंगा। तुम मनुष्य बनो और स्त्री के पीछे पागल रहो, जैसे मैं रो रहा हूं उससे भी अधिक रो। तो इतना भगवान राम रोए, वो तो अपनी इच्छा से ही सब कुछ किए, लेकिन ऐसे बाह्य रूप से देखने लगता है कि नारद जी के साप से, एक ब्राह्मण के साप से वे सीता जी के वियोग में रोए। भगवान राम बहुत रोए जब सीता जी का हरण हो गया था, रावण हर लिया था, तब सीता जी के वियोग में रोए। ये वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, बहुत ज्यादा रोने का वर्णन। और अंत में सीता से वियोग हो गया, सीता समुद्र पृथ्वी में समा गई, उस समय भी खूब रोए। तो ऐसी दशा होती है भक्त की, भगवान अपने भक्तों की के थोड़े दोष को भी सह नहीं सकते, और खास करके उसमें यदि अभिमान आ जाए, घमंड आ जाए, वो तो घमंड किसी भी तरह का हो, तो बलि महाराज में अभिमान आ गया था कि मैं दानी हूँ, मैं दाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता है, मैं जितेंद्रिय हूँ, जो कहा वो पूरा करके रहूँगा। यह अभिमान ही है, किसी भी प्रकार का अभिमान भगवान सह नहीं पाते। तो बड़ी आसानी से भिखमंगा बन करके बलि महाराज का अभिमान तोड़ दिए। तो उसी को कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्राह्मण, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ, और यदि धनी होने पर भी, विद्या होने पर भी, जवान होने पर भी, सुंदर शरीर होने पर भी यदि अभिमान नहीं होता है, दीनता रहती है, तो उस पर मेरी कृपा समझिए। तो आप घबराइए मत कि मैं इसको दंड दे रहा हूँ, मैं दंड नहीं दे रहा हूँ, इसके रोग को ठीक कर रहा हूँ। इति उक्तवंतम पुरुषम पुरातनम, इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। किसी भक्त को यदि भगवान निर्धन बना दें, रोग से ग्रस्त कर दें, तो उस पर अनुग्रह हट गया ऐसी बात नहीं, वो कृपा करते हैं, भक्त पर विपत्ति देते हैं, रोग देते हैं, निर्धनता देते हैं। जिस भक्त में अभिमान हो जाए कि मैं जितेंद्रिय हूँ, मैं बहुत समी हूँ, सम वाला हूँ, तो भगवान उसका अभिमान खंडित कर देते हैं। ऐसा अभिमान अक्रूर जी में भी हुआ था। अक्रूर जी द्वारका में अपने को बहुत जितेंद्रिय और सम गुण से युक्त मानते थे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं इंद्रियों को वश में रखा हूँ, मन को वश में रखा हूँ, तो उनके अभिमान को भगवान जान गए और एक उपाय से तोड़ दिया अभिमान। भगवान अपने भक्त के अभिमान को तोड़ देते हैं। तो श्री भगवान बलराम जी के साथ द्वारका से निकल गए थे ये सुन करके कि हमारे फुफेरे भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि जल गए लक्षा गृह में, मर गए। तो ये सुन करके भगवान बलराम जी के साथ गए हस्तिनापुर पता लगाने के लिए और बड़े दुखी थे। तो इधर द्वारका में कांड हुआ। एक व्यक्ति था सत्राजित, उसको भगवान सूर्य ने एक मणि दिया, स्यमंतक मणि, उसको लेकर के आया द्वारका में। तो भगवान कृष्ण से जब जादों ने कहा कि सूर्य आ रहे हैं आपका दर्शन करने, तो भगवान कृष्ण ने कहा ये सूर्य नहीं है, सूर्य का भक्त है, मणि लेकर आ रहा है, वो अरबों खरबों रुपए की मणि, उसका कोई आधुनिक दाम नहीं लगा सकते, बहुत कीमती मणि। तो भगवान ने कह दिया सत्राजित से कि आप इस मणि को दे दीजिए उग्रसेन जी को, मतलब सरकार के बैंक में जमा कर दीजिए। तो भगवान तो शुद्ध हृदय से कहे, वो चाहते थे कि इतना कीमती मणि ये न रखें, जोखिम है ना, जोखिम की चीज नहीं रखनी चाहिए, सरकारी कोष में दे दें रखने के लिए, नहीं तो कोई भी मार पीट करके ले लेगा। तो वो सत्राजित सोचा कि ये लोह में है, उसने साफ भगवान की बात का उल्लंघन किया, नहीं मैं नहीं दूंगा, हमारे घर में रहेगा ये मणि। उस मणि की विशेषता थी कि जहाँ वो रखा जाता था, उसकी पूजा होती थी, तो अपने चारों तरफ वो 85 किलो सोना उत्पन्न हो जाता था प्रतिदिन। तो इतने बड़े धन को वो सत्राजित मन से त्याग नहीं सका, अपने घर पर ही रखा। और जब भगवान चले गए हस्तिनापुर, तब एक दिन अक्रूर जी और कृतवर्मा उकसाए सब धनवा को, कहे कि तुम इतना बड़ा धन है और उसकी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है, तो सत्राजित की जान मार करके उसको क्यों नहीं ले लेते हैं। मुख्य रूप से अक्रूर जी कहे, वो सत्राजित बहकावे में आ गया और कत्ल कर दिया सत्राजित को, मार दिया। स्त्रियां देख रही थी, सबने मना किया, लेकिन जैसे पशु को कोई मार देता है कसाई, वैसे मार दिया। सब जगह हल्ला हुआ कि कृष्ण ने मारा है। कृष्ण सत्राजित को मारे हैं क्योंकि मणि की चर्चा किए थे, तो लोह बस सत्राजित को मार दिए। ये संसार है, किसी बड़े व्यक्ति का थोड़ा सा दोष लोगों को बहुत प्रिय लगता है, किसी महान पुरुष में यदि थोड़ा दोष दिखाई पड़ जाए तो उसी को ज्यादा कहते सुनते हैं, अखबार में निकालते हैं, टीवी में देखा करते हैं। तो सब लोग हल्ला कर रहे थे द्वारका में, यहाँ तक कि बलराम जी को भी कुछ शंका हो गई कि हाँ इसकी आदत है बचपन में दही दूध चुराने की, माखन चुराने की, तो हो सकता है पहले खीरा चुराता था, अब हीरा चुराने लगे। तो वे तो चले गए द्वारका, द्वारका से हस्तिनापुर भगवान के साथ। तब ये वध की घटना हुई थी, तो अक्रूर जी वध करके भाग गए थे अपने मामा के गांव काशी वाराणसी में चले गए थे। जा करके वहां खूब बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, पैसा काफी था ही, खूब ब्राह्मणों को दान देते थे, खूब पैसा यज्ञ में दक्षिणाएं देते थे और जनता को प्रसाद वितरण करते थे। भक्त के पास पैसा हो जाए तो क्या करेगा, वही करेगा। तो श्री भगवान जब हस्तिनापुर से लौटे तब सबसे पहले अक्रूर जी को बुलाए, भरी सभा में सुधर्मा सभा में बुलाए और कहे, चाचा जी मैं जानता हूँ कि वो सुधर्मा सतधनवा आपके पास मणि रह करके गया है, तो मणि आप ला करके दिखा दीजिए और सारी बात कह दीजिए कैसे आपको मिली, मैं यही चाहता हूँ। आप इसमें संदेह नहीं कि आप लिए हैं, सतधनवा मणि अक्रूर जी के पास फेंक करके चला गया था। तो अक्रूर जी घर गए अपने और मणि लेकर के आए सुधर्मा सभा में, अपनी अटैची खोल करके साफ दिखाए और बताए कि इस तरह से हमारे में दुर्विचार आ गया था, वास्तव में सत्राजित की हत्या में मैं कारण हूँ। तो तब द्वारका में प्रचार हुआ कि अरे अक्रूर ऐसा अधम काम किया है, लोभी हत्यारा। तो अक्रूर जी की जो भावना थी, अभिमान था, भगवान ने उसको नष्ट कर दिया। सेमंतक मणि के प्रसंग से ऐसे ही भगवान भक्तों का अभिमान हरते ही हैं, उनका स्वभाव है कोई दोष हो दोषों को हर लेते हैं, वास्तव में हरी हैं। उस दोष के चलते बहुत बड़ा दुख होने आने वाला होता है, उसको वे हर लेते हैं। और सकल शोकदायक अभिमान, अभिमान सारे शोकों को देने वाला है, इसलिए अभिमान तो थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। भगवान वही आए जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने सिखाया, अमा तृणादपि सुने चेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है, सदा कीर्तन करना चाहिए, भगवान हरि का कीर्तन सदा करना चाहिए, सब समय नाम उच्चारण करना चाहिए। पर कौन करेगा, क्या योग्यता होगी उसमें, इसको उन्होंने बताया। उत्तम हो करके भी अपने को तिनके के समान तुच्छ समझे, तृण का टुकड़ा रास्ते में पड़ा रहता है, उस पर कोई थूक देता है, पैर से आघात करता है, पर वह तृण का टुकड़ा कभी उठ करके प्रतिवाद नहीं करता है कि हम पर तुमने क्यों पैर रख दिया, सब सह लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी भावना है कि मैं छोटा हूं, अधम हूं। ये देखा गया है, कोई भिखमंगा भीख मांगता है केवल एक रुपये के लिए, दो रुपये के लिए, और उसको लोग कई लोग देते भी नहीं है और ऊपर से बोल देते हैं जाओ हटो, तो चुपचाप सह लेता है क्योंकि वो समझता है कि मैं भीख मांगा हूँ। तो इस तरह से भक्त को अपने को नीच समझना चाहिए। अगर नीच समझेगा, सबको मान देगा और स्वयं सम्मान नहीं चाहेगा, अमानिना मान देना, तो वही व्यक्ति सदा कीर्तन कर सकता है। एक यह भी अर्थ है, भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत नम्र होना जरूरी है। और सहिष्णु होना, सह लेना किसी का मान, किसी की गाली दुर्व्यवहार सह लेना चाहिए। ये भक्त का गुण है। कैसे सहलना चाहिए? जैसे वृक्ष सह लेता है, वृक्ष में फल लगता है, बच्चे बहुत से ढेला मारते हैं, तो ढेला मारते हैं तो वह ढेला फिर नहीं मारता है, वो फल देता है, छाया देता है। यहाँ तक कि वृक्ष को काटने जो जाता है उसको भी छाया देता है। गर्मी के दिन में लोहार लोग विश्राम करते हैं पेड़ के नीचे और उसी पेड़ को काटते हैं, पर उनको भगाता नहीं है, छाया देता है। सूख जाता है लेकिन पानी मांगने नहीं जाता है, किसी से पानी मांगने नहीं जाता है। कभी मांगना नहीं चाहिए भक्त को। इसीलिए भगवान चैतन्य महापुरुष कहते हैं तरो रिवा सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष से अधिक तो हो नहीं सकते हैं। तरोरपि ये पाठ नहीं है, तरोरपि का अर्थ है वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना, नहीं, तरो रिवा सहिष्णु होना, युवा मतलब समान, वृक्ष जैसा सहिष्णु होना चाहिए। हम लोगों ने देखा है वन में घूमते समय कई ऐसे मनुष्य हैं, किरात और आभीर वगैरह, वृक्ष पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। मैंने कहा एक व्यक्ति से, क्यों मार रहे हो ऐसे वृक्ष पर कुल्हाड़ी मार दे? महुआ का पेड़ था उस पर मार दे। तो कहता है मैं कुल्हाड़ी को, टांगी को फरगा रहा हूँ। इसी तरह से तुम्हारे शरीर पर कोई मारे कुल्हाड़ी और कहे कि इसके रक्त से मैं इसको सहला रहा हूँ, तो कैसा लगेगा? भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसे भी रहना चाहिए। यदि कोई मार दिया, थूक दिया, गाली दे दिया, सब सह करके और हरे कृष्ण कहते हैं। भगवान को उदाहरण यही मिला वृक्ष। तो असली गुरु वृक्ष है, उसका आचरण देख करके स्वयं अपने आचरण में लाना चाहिए। ये कोई सामान्य शिक्षा नहीं है, बहुत उच्च कोटि की शिक्षा है। जिस रीति से हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे उस तरह की रीति सिखाई जा रही है। कीर्तनियो सदा हरि, भगवान का सदा कीर्तन करें, सदा उनका कथन करें, नाम जप करें। ये कैसे कर पाएंगे? जब हम वृक्ष जैसे बनेंगे और घास जैसे बनेंगे। भगवान ने ये आकर के नहीं सिखाया कि किसी आदमी जैसा बनो, किसी महात्मा जैसा बनो, घास जैसा नम्र बनो, वृक्ष जैसा सहिष्णु बनो, मान न लो और मान दो सबको, यदि कोई व्यक्ति मिलता है तो प्रेम से बोलना, आइए बैठिए, थोड़ा जल दें उसको पीने के लिए, यही है भक्त की रीति। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ और ये गरीब है, ये यहाँ क्यों आया, क्यों बैठा। कोई भी व्यक्ति हो, सम्मान देना चाहिए। सम्मान देना चाहिए, और वो यदि सम्मान दे रहा है, दूसरा कोई भी दे रहा है, भक्त कह करके, आप भगवान के भक्त हैं, प्रभु जी आप महान हैं, तो फूल नहीं जाना चाहिए, मान को ठुकरा देना चाहिए, नहीं नहीं, अपने पर विचार करना चाहिए, मैं बहुत अधम हूँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ। तब लोग पूछते थे, आप रोते क्यों हैं, आपके शरीर में पुलक दिखाई पड़ता है, रोते हैं, गदगद वाणी हो जाती। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मैं ये जानता हूँ कि कृष्ण की भक्ति सबसे बड़ी चीज है, लेकिन मैं भक्त नहीं हूँ, केवल दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए आंसू भर लेता हूँ। मैं रोता हूँ इसलिए कि लोग मुझे कहें कि ये भगवान का प्रेमी है, क्योंकि हमारी दृष्टि में कृष्ण का भक्त होना ये सबसे बड़ी चीज है। इसी सौभाग्य को दिखाने के लिए मैं रोता हूँ। न प्रेम गंधु सिद्रोपी में हरल, हरि में मेरा थोड़ा भी प्रेम नहीं है। कंदा में निज सौभाग्य भरम प्रकाशित हूँ, मैं अपने सौभाग्य को प्रकट करने के लिए रोता हूँ, ये मेरा दंभ है। तो जो भगवान कहे हैं, जिस उपाय से भजन हो सकता है वो करना चाहिए, जितनी कर सके। वृक्ष जैसे बनना तो बहुत कठिन है, लेकिन कम से कम कुछ बातें तो सहनी चाहिए, जैसे अपशब्द किसी का सह लेना, और कोई टांगी चला दे आपके पैर पर तो उसको सह नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा ही आचरण सहना चाहिए। कभी किसी के पैर से पैर दब गया तो ये नहीं कि बिच्छू जैसा बस उसको डंक मारे काटे, सह लें, हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल। एक बार मैं एक बस में चढ़ा, अपने गांव पर था, थोड़ी दूर जाना था बाजार, अब जल्दी जल्दी में बस में बहुत भीड़ थी, मैं चढ़ा तो ध्यान नहीं दिया, पिछला सीट माताजियों का होता है, वहीं एक माताजी बैठी थी, तो चढ़ने में तो ध्यान उस पर था नहीं, चढ़ने का ध्यान था, चलते चलते मैं पैर दे दिया माताजी के पैर पर, तो इतने जोर से मुझे डांटी माताजी, कहे कि तुम अंधा हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम इसीलिए बस पर चढ़ा। नहीं, मैं कहा कि माताजी मुझे पता नहीं था कि आप चढ़कर आ रही हैं, मैं मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं आपके चरण पर धांगू। तो ऐसे हो जाता है, अनजान में भी कोई दुख दे पर सह लेना चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई संकट आ जाए तो उसको सहना चाहिए, जाड़ा सहना, गर्मी सहना, और लोगों के दुर्वचन को सहना, ये जाड़ा गर्मी सहना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी के कठोर वचन को सह लेना ये बड़ा मुश्किल है। पर वैष्णव को सब सहना चाहिए। ऐसी कथा है कि भगवान बुद्ध एक बार ध्यान कर रहे थे और एक किसान के खेत में कुछ पशु पड़ गए थे, चर रहे थे, तो इतना दुष्ट था वो आया गाली देता हुआ भगवान बुद्ध को, बहुत गाली दिया। वो ध्यान पर बैठे थे और गाली दे रहा, खूब गाली दिया। इसके बाद भगवान बुद्ध का ध्यान टूटा, उस व्यक्ति ने क्षमा मांगा, मैं आपको गाली दिया, मैं नहीं समझता था कि आप ध्यान कर रहे हैं, मैं समझा कि आप खेत पर बैठे हैं, आपको पशु हटाना चाहिए। तो भगवान ने कहा कब गाली दिए, क्या हुआ? तो वो कहने लगा मैं आपको बहुत गाली दिया, क्षमा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि आप गाली दिए लेकिन मैं लिया नहीं, एक भी गाली मैं लिया नहीं। तो गाली का कोई अर्थ थोड़े होता है, झूठा शब्द है। एक बार हमारे मंदिर में हमारे गांव का एक व्यक्ति आया था कृष्ण बलराम मंदिर में, उस समय केवल अंग्रेज ही रहते थे, बिल्कुल 1976 की बात कह रहा हूं। तो एक दिन वे खा करके सोए थे, दोपहर का समय था, गर्मी का दिन, वो टेम्पल कमांडर आया और कहा कि चलो टेम्पल क्लीनिंग करने। तो वो समझते नहीं थे, खा करके उनको नींद आ रही थी, तो हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ कहा कि चलो चलो, कम कम कह रहा था। और नए भक्तों से उस समय मंदिर साफ कराते थे, यही नियम था, कोई लेबर साफ नहीं करते थे। तो वो कहे कि हमको तंग मत करो, सोने दो, ये हिंदी बोलते थे, वो अंग्रेजी बोलता था। मैं बगल में ही रूम में था, गेस्ट हाउस में, तो एकाएक आवाज आई धड़ाम से, वो उठा करके पटक दिए। वो रोता हुआ हमारे पास आया कि तुम्हारा आदमी हमको मार दिया, ये किया, अंग्रेजी में सब बोल रहा था। तो मैं गया जाकर पूछने लगा क्यों पटके इसको, वो पटक दिए थे। तो कहते हैं ये गाली दे रहा था, सबसे पहले मैं पूछा किस भाषा में, तो ये अंग्रेजी में गाली देते रहे, अंग्रेजी में गाली देते रहो, एक अक्षर भी अंग्रेजी नहीं जानते थे। मैं पूछा गाली तुहरा समझ में आ गई, तो वो हमसे क्या कहते हैं, गलिया समझ में ना आई। हमने कहा जब भाषा समझ में लिखा हो तो गाली कैसे समझ गई। तो हमसे भी कह रहे अब आइन मत करी, हम नहीं समझ अंग्रेजी का गरियो नहीं समझ, गाड़ी दिले है एक हम पटक दिले हैं। तो मैं पूछा उससे कि तुमको कैसे मारा, तो कहा कि मैं इसका हाथ पकड़ लिया इसीलिए मैं उसको पटक दिया। तो गाली में कोई चीज नहीं है, गाली बेकार है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपशब्द को सह लेना। और कोई अच्छी प्रशंसा करने से हम उतने बड़े थोड़े हो जाएंगे। कोई हमको कहने लगे आप चैतन्य महाप्रभु जैसे हैं, तो हम अगर मान लें कि चैतन्य महाप्रभु जैसे हैं तो कितना बड़ा हमारा पतन है। बड़ाई से कुछ होता नहीं है और निंदा से कोई क्षति नहीं होती है। इसीलिए सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, सम्मान से बिगड़ता है। सम्मान एक मीठा विष है, मीठा लगता है लेकिन जहर है, उससे आदमी बिगड़ जाता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ये उपाय बता रहे हैं, अमानिना मान देना कीर्तनी और सदा हरि, घास के समान नम्र रहे, वृक्ष के समान सहनशील रहे और सबको मान दे, मान की अपेक्षा न रखे, नहीं तो जलन होती है। कई जगह व्यक्ति घूमता है और सब जगह आशा करे कि सब हमको प्रणाम करेंगे। अरे कम से कम दूसरा नहीं लेकिन इस्कान के भक्तों को तो चाहिए कि वे प्रणाम करें, और इसलिए कि मैं सन्यासी हूँ। तो इस भावना से व्यक्ति जलता रहेगा, मैं बड़ा हूँ, मैं सीनियर हूँ, मुझको प्रणाम चाहिए और मुझको भोजन चाहिए पहले, सबसे पहले। इस प्रकार का विचार नहीं होना चाहिए, भक्ति कर पाएंगे इसी उपाय से। सभी तृतीया विभक्ति में है उपाय, जैसे तृणादपि सुनी चैना तरो रिव सहिष्णुना अमानिना मान देना, चारों में तृतीया विभक्ति लगी है साधन। इस उपाय से तृणादपि सुनी चैना तरो रिव सहिष्णुना अमानिना और मान देना, इन चार उपायों से हम भक्ति कर सकेंगे सदा। तो श्री भगवान बलि महाराज के विषय में बोल रहे हैं कि मैं इसका धन छीन लिया, छीनता हूँ, उस धन को यदि धन से व्यक्ति का अहित होने वाला हो, उससे उसमें अभिमान आ जाए विद्या से रूप से, और यदि इन सबके रहने पर भी उस कुल में जन्म भी हुआ है, विद्या भी पढ़ा है, पढ़ाई लिखाई खूब अच्छी किया है और जवानी है, बहुत सुंदर शरीर है और सब गुण होते भी यदि अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, तो ये ब्रह्मा जी आप समझिए कि उस पर मेरी कृपा है। तो इसके द्वारा यही सिद्धांत निकलता है कि हमारे पास यदि धन हो तो उस धन का उपयोग करना चाहिए, तब भगवान नहीं छीनते हैं, अच्छे काम में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति में। यदि धन से हमारा नुकसान होने वाला है, हम गलत पंथ पर चले जा रहे हैं, तो भगवान कृपा करके धन को हर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं आप घबराइए मत, ऐसा दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्तिवर्धनम, यह बलि समस्त दानवों में और दैत्यों में श्रेष्ठ है और एक कीर्ति बढ़ाने वाला है दानव कुल का, दैत्य कुल का। अजयसिद्ध अजयाम मायाम, जिस पर विजय नहीं पाया जा सकता है, बहुत कठिन है, उस माया पर विजय पा लिया है। अजयाम मायाम, जिस माया पर विजय पाना कठिन है, उस मेरी माया को ये जीत लिया है। अजय सिद्ध अजयाम मायाम, क्या पहचान है कि माया को जीत लिया है। सिदन अपि न मुह्यति, इसको बहुत दुख दिया जा रहा है, फिर भी ये भ्रम में नहीं है। दुख देने पर भी क्षुब्ध नहीं हुआ। भगवान गिना रहे क्या क्या दुख दिया गया। 29वें अध्याय श्लोक में छीण रिक्त था, इसका धन चला गया है। छीण रिक्त च्युत पदश्च्युत, यह अपने पद से गिर गया है। यह स्वर्ग का शासक था, इसका स्वर्ग चला गया है। क्षिप्त, इस पर आक्षेप हुआ, मैंने आक्षेप किया, आक्षेप किया, कहा कि तुम दानी नहीं हो, बेकार दानी बनने का नाटक कर रहे हो, तुम झूठे व्यक्ति हो, ये आक्षेप किया। बद्धस्य शत्रुभि, और अपने शत्रुओं द्वारा यह बांधा गया, वरुण पास में बांधा गया। ज्ञात भी परित्यक्तो, अपने बंधु बांधवों के द्वारा ये छोड़ दिया गया। इसके जो बांधव थे, परिवार के लोग, इसको छोड़कर भाग गए। ये संकट में था, फिर भी दैत्य लोग भाग गए। यातना दी गई इसको, इसको बांध करके गिराया गया। गुरुणा भर्सिता, इसके गुरु ने भर्सना किया, इसको ऊंचा नीचा बोला, यहाँ तक कि साप दे दिया। इतना बड़ा मुनि गुरु, इसको साप दे दिया। पर फिर भी यह सत्य को नहीं छोड़ा, यही है माया पर विजय का लक्षण। छलय रुक्तो माया धर्म, मैं छल से ब्राह्मण बन करके इसके साथ बात किया धर्म के विषय में, कपट किया, लेकिन नायम तेजति सत्यवाद, यह सत्यवादी है, ये अपने वचन से डिगा नहीं। तो ब्रह्मा जी, ये सब में प्राप्त स्थानम, यह मेरा स्थान प्राप्त करेगा। दुष्प्रापम अमरपि, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उस स्थान को ये प्राप्त करेगा। इसके बाद जब मन्वंतर आएगा, सवर्णेनंतर, सवर्णी मन्वंतर में जब सवर्णी जी मनु बनेंगे, उस समय ये इंद्र पद पाएगा, ये इंद्र होगा। मन्वंतर बदलता रहता है, ये मनु इस समय पुरंदर जी हैं। तो इस मन्वंतर के बाद सावरणी मन्वंतर आएगा, तो इसमें यह इंद्र बनेगा। सवर्णेनंतर सायम भवित्येन्द्र मदाश्रय, यह इंद्र बनेगा सवर्णी मनवंतर में। तो इस बात को सुन करके इससे देवता सब द्वेष करेंगे, इंद्र पद पर आने वाला है तो सब द्वेष करेंगे, लेकिन कुछ भी उनका बस नहीं चलेगा। मदाश्रय, यह मेरे आश्रय में रहेगा इंद्र बन करके। तावत इंद्र बनने से पहले तब तक यह सुतल लोक में रहेगा। सुतल लोक में बहुत से सुंदर सुंदर भवन हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे प्रासाद, और जिस लोक में कोई भी शारीरिक रोग नहीं होता है, मानसिक रोग नहीं होते, बेचैनी नहीं होता है, कभी थकावट नहीं होती है, कभी आलस्य नहीं आता है, और कभी पराजय नहीं होती है, हार नहीं होती है, उस लोक का स्वभाव है। कोई आधी नहीं, व्याधि नहीं, आधी मतलब कोई मानसिक चिंता नहीं होती है और शारीरिक रोग आदि नहीं होता। भगवान के द्वारा बनाया हुआ, भगवान के आदेश से विश्वकर्मा जी ने बनाया है। सुतल लोक में जो भी भवन है सब विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ है। विश्वकर्मा जी सबसे बड़े इंजीनियर हैं घर बनाने के, सबसे बड़े शिल्पी हैं। तो भगवान कहते हैं कि विश्वकर्म विनिर्मितम, विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ सजाया हुआ सुतल लोक है, जहाँ देवता भी नहीं पहुंच पाते हैं, ना देव व्याध है अस्तत्व, वहाँ न आधियां हैं न व्याधियां हैं। और क्लमह, क्लमह का अर्थ है थकावट, कितना भी कोई परिश्रम करे कभी शरीर थकता नहीं है, थकावट नहीं है, तंद्रा आलस्य नहीं, पराभव वहाँ पराजय नहीं। इस तरह से नोपसर्गा, वहाँ उपसर्ग अर्थात कोई दुख नहीं है, केवल वहाँ रहने मात्र से सब सुख संभव है। वहाँ मैं रहूँगा मेरी दृष्टि से और मेरी कथाओं के श्रवण से वहाँ सब सुख रहता है। फिर भगवान डायरेक्ट बलि महाराज से कह रहे हैं, इंद्रसेन महाराज कहते हैं, हे इंद्रसेन, हे बलि महाराज, आपका कल्याण हो, आप जाइए सुतल लोक में, आप अपने परिवार के साथ बंधु बांधवों के साथ वहाँ जाइए, सबके साथ ज्ञात भी परिवारित बंधुओं से घिरे हुए जाइए। वहाँ भगवान भेज रहे हैं, ऐसा नहीं कि मर करके जाना है, इसी शरीर से आप जाइए सुतल लोक। बड़े बड़े देवता आपको अभिभूत नहीं कर पाएंगे, तो बलि महाराज ने कहा कि असुरों से भी हमको भय होता है और सताएंगे। तो भगवान ने कहा कि जो भी असुर आपको तंग करेगा तो मेरा मेरे चक्र से उसका वध हो जाएगा, मेरा चक्र छोड़ेगा नहीं। रक्षिसे सर्वतोहम ताम, मैं सब प्रकार से आपकी रक्षा करूंगा। सानुगम सपरिच्छदम, आपके संबंधियों के साथ आपके जो भी अनुगामी रहेंगे उन सबकी रक्षा करूंगा, और सपरिच्छदम सभी समान के साथ वहाँ मैं सिक्योरिटी रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा, आपके अनुगामियों के साथ, आपके समान के साथ। सदा सन्निहितम वीरा तत्माम दक्षते भवान, वहाँ आप सदा हमको देखेंगे, मैं वहीं रहूंगा सुतल लोक में। दक्षते, आप देखेंगे हमको, हमारा दर्शन करेंगे, वहीं रहूंगा। तो बल्ली महाराज ने कहा कि एक बात है कि जब असुरों के साथ वहां रहूंगा तो असुरों के संग रहने से हमें आसुर भाव आ जाएगा, इसलिए हमको वहां क्यों भेज रहे हैं। तब भगवान कहते हैं असुरों के संग से जो भी असुर विचार आप में आएगा वो तुरंत खत्म हो जाएगा मेरी कथाओं को सुनने से, मुझको देखने से। आप भय मत कीजिए। इतनी बात कहा भगवान, इति उक्तवन्तम पुरुषम पुरातन, इस प्रकार पुरातन पुरुष सनातन पुरुष श्री भगवान बोले बलि महाराज। तो बलि महाराज जाते जाने से पहले हाथ जोड़ करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किए। उस समय उनके आंखों में आंसू छलछला आए थे और वाणी गदगद हो गई। गदगद वाणी से भगवान के बारे में कहने लगे, बलि रुवाच, अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमा, मैं आपको प्रणाम करने का केवल प्रयास किया, प्रणाम कर नहीं पाया, पर जो बड़े बड़े शुद्ध भक्तों को लाभ होता है वो लाभ हमको मिल गया। प्रणाम करने की चेष्टा करने मात्र से हमने प्रणाम करने का संकल्प किया, लेकिन बहुत से असुर भरे थे, जब आप आए तो बहुत से असुर के साथ मैं था, उन असुरों के कारण और गुरु महाराज थे तो आपको मैं प्रणाम कर नहीं पाया। चाहते थे प्रणाम करना बलि महाराज, लेकिन कर नहीं पाए। प्रणाम करने की चेष्टा किए, संकल्प किए, लेकिन प्रणाम कर नहीं पाए वामन देव को। समाज ऐसा था वे सकुचा गए, संकोच किए, तो उसी को कह रहे हैं कि मैं अहो प्रणामाय कृता समुद्यमा, मैं प्रणाम के लिए चेष्टा किया, प्रयास किया, पर उसी प्रयास से ही थोड़ा सा विचार करने से प्रपन्न भक्ता से विधव समाहित। प्रपन्न भक्ता से आपके जो शरणागत भक्त हैं उनको जो मिलता है लाभ वो हमको मिला है। जो लोकपालों को भी प्रसाद नहीं मिलता है, आपका आपकी कृपा नहीं मिलती है, वह मुझ पर भी मिले, मुझ पर कृपा हुई, मुझे असुर पर अपसदे नीच, मैं नीच असुर हूँ, फिर भी वो कृपा मिल गई, आपका ऐसा स्वभाव है। प्रणाम किया नहीं, केवल प्रणाम करने की सोचा और प्रणाम का फल मिला। वह फल जो लोकपालों को भी नहीं मिलता है, ब्रह्मा जी या वरुण इंद्र चंद्र सूर्य कुबेर आदि को नहीं मिलता, बड़े बड़े देवताओं को जो प्रसाद नहीं मिला वो प्रसाद हमको मिल गया। केवल प्रणाम करने की सोचा उसी से। इस श्लोक में प्रभुपाद जी परपर्ट में लिखे हैं, भगवान की सेवा के लिए शुद्ध मन में इच्छा होनी चाहिए। अगर सेवा करने की शक्ति नहीं है, अपने पास धन नहीं है और सुविधा भी नहीं है, समय नहीं है, पर केवल व्यक्ति सोचे कि हमें सेवा करनी है, तो भावग्राही जनार्दन, भगवान कृष्ण तो भाव देखते हैं, भाव को समझ करके उसके अनुसार फल देते हैं। मन में भी सोचना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सेवा करूं, मन में सोचा भी तो बहुत अच्छी चीज है। बलि महाराज कहते हैं कि मैं प्रणाम करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, पर बड़े बड़े भक्तों को जो लाभ होता है, जो देवताओं को लाल लाभ नहीं मिलता है, वो लाभ मुझे मिला। ऐसा भी होता है, यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाना चाहता है पर कार्यवश या संबंधियों के आग्रह से नहीं जा पाया, तो जहाँ है वहीं से प्रणाम करे तो उसे भक्ति का फल मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात करे, मैं प्रणाम करना चाहता था पर कर नहीं पाया और फिर भी हमको वह कृपा मिली जो बड़े बड़े लोकपालों को नहीं मिली। इस प्रकार से कह करके इति उक्त्वा हरिम अनम्य, यह कह करके श्री बलि महाराज भगवान हरि को प्रणाम किए, वामन देव को, ब्रह्मांड ब्रह्मा जी को, इसके बाद सब हवन भगवान शिव को प्रणाम किए, प्रणाम करके और इसके बाद सभी कुटुंबियों के साथ सुतल लोक की यात्रा, सुतल लोक चले गए जहाँ आज भी हैं वे। मुक्त वरुण पास से खोल दिए गए, मुक्त कर दिए गए और सुतल लोक में चले गए। इस प्रकार अपने भाई इंद्र को भगवान ने पृथ्वी दे दिया, स्वर्ग दे दिया। और माता अदिति की कामना को पूरा किया। माता इसीलिए व्रत की थी, पयोव्रत की, उसके पुत्रों को राज्य मिले, स्वर्ग मिले, तो भगवान दे दिए स्वर्ग इंद्र को। और सबसे बड़े भाई थे तो इंद्र को राज दे दिए, अदिति की कामना पूरी कर दिए और तीनों जगत का शासन करने लगे। जब बलि महाराज ने देखा कि हमारे पौत्र पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है और यह वंश धर्म हमारे वंश की वृद्धि करेगा, खास करके भगवान की भक्ति देखे बलि महाराज में, तो प्रहलाद महाराज बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न, और भक्ति उमड़ गई प्रहलाद महाराज में। वे भगवान से कहने लगे, जाने के पहले, नेमम विरिंचो लभते प्रसादम, हे प्रभु आपने जो कृपा हम असुरों पर की है ऐसी कृपा आप ब्रह्मा जी पर भी नहीं किए, ब्रह्मा जी भी ऐसी कृपा नहीं पाए, न इमम विरिंचो लभते प्रसादम, न श्रीर, ब्रह्मा जी आपके साक्षात पुत्र होते हुए भी वह कृपा नहीं पाए, और साक्षात आपकी सहधर्मिणी पत्नी श्री लक्ष्मी जी नहीं पा सकी, और भगवान शिव भी जो आपके स्वरूप हैं वे भी नहीं पा पाए, और दूसरे देवता की तो बात ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी भी ऐसी कृपा नहीं पाए जैसी कृपा आपने हम पर की है, हम असुरों पर की है। मन्ने असुराणाम असि दुर्गपाल, आप हम असुरों के दुर्गपाल हो गए, किले की रक्षा करने वाले। स्वयं अपने मुख से भगवान ने कहा कि मैं वहां रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा, तो इसको सुन करके प्रहलाद जी कह रहे हैं हम असुरों के द्वारपाल आप हो गए, दुर्गपाल। दुर्गपाल का अर्थ होता है दुर्ग माने किला होता है, किले का पालन करने वाले, और दुर्ग का अर्थ है जहाँ जाना कठिन है, दुर्ग विपत्ति संकट, संकट संकट में पालन करने वाले, सब प्रकार के संकट से हमारी रक्षा करेंगे। सारा विश्व जिनकी वंदना करता है वे देवता लोग भी आपके चरणों की वंदना करते हैं, विश्वाभिवंदे अभिवंदितांघ्रि, हे प्रभु हे ब्रह्मा आदि को जो भी भोग सुलभ है वो सब आपने रचा है, संसार की रचना किया है। बहुत आश्चर्य की बात है कि कैसे हम आपकी कृपा के पात्र हो गए, हम तो खल हैं, असुर खल हैं, बहुत पापी, फिर भी आपकी कृपा के हम पात्र हो गए। चित्रम, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो इहितम, आपकी लीला विचित्र है, आप अपनी जोग माया से इस विश्व की रचना किए हैं, और वास्तव में आप सम हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, सबके प्रति सम है, आप में विषमता नहीं है, लेकिन फिर भी आप भक्ति देख करके भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान केवल भक्ति को देखते हैं, तो भक्ति के कारण उनके व्यवहार में विषमता देखी जाती है। सिद्धांत में भगवान सबके लिए एक है, कोई भेद नहीं, लेकिन जो उनकी शरण में जाता है तो उसको वे मानते ही हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कल्प वृक्ष का, कल्प वृक्ष एक वृक्ष है स्वर्ग में, स्वर्गीय वृक्ष है, उसकी छाया में कोई जा करके जो भी मांगता है, जो भी वस्तु उसको देता है, लेकिन शरण में जाना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान सबके लिए सम है, पर जो उनकी शरण लेता है, उनकी भक्ति करता है, तो उस पर विशेष कृपा करते ही हैं। अतः भगवान में विषमता नहीं है, जैसे कल्प वृक्ष विषम नहीं है। जो कल्प वृक्ष की छाया में गया ही नहीं तो उसको कुछ ना मिले तो कल्प वृक्ष का कोई दोष नहीं, छाया में जाने पर ही वो देता है। लेकिन ये कल्प वृक्ष ऐसा है, किसी भी तरह से स्मरण करने पर भी, नाम उच्चारण करने पर भी यह फल देता ही है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। कल्प वृक्ष जैसा भगवान का स्वभाव है, सबके लिए सम है, किसी के लिए विषम नहीं। पर दो तरह के जीव हैं इस संसार में, एक भक्त है और दूसरे अभक्त। अभक्त भगवान की शरण नहीं लेते हैं तो उनको उनका मंगल नहीं होता है। पर इसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष जीव का है कि वो भूल जाता है भगवान को, माया के अधीन होकर उस शरण नहीं ले पाता है। पर जो शरण लेते हैं वे अतिशय भाग्यशाली हैं, उनको भगवान की कृपा मिलेगी निश्चित। भगवान की कृपा देवताओं पर होती है क्योंकि वे भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, शरण में रहते हैं और भगवान के द्वारा बनाए हुए विश्व को ये कभी नहीं मानते हैं कि ये हमारा है, हमारे भोग की चीज़ है। ये जानते हैं कि भगवान परम ईश्वर है। देवताओं का एक गुण है और असुरों का एक स्वभाव है, वे कोई भी वस्तु कोई भी स्थान को अपना मानते हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो भक्त हैं वे भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, भगवान सबके प्रिय हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रिय, भगवान गीता में कहे हैं मेरे लिए सभी समान है, मैं सबके लिए सम हूँ, मेरा कोई द्वेष का पात्र नहीं है और न कोई प्रेम का पात्र है, सबके लिए सम है। पर फिर भी मई भजंतु माम भक्त्या, फिर भी जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मई ते सुचाते हैं, मैं उनका मित्र हूँ और वे मेरे मित्र हैं। भक्ति की हमेशा सराहना किए हैं भगवान। तो भक्ति करनी चाहिए, जितनी शक्ति हो पूरे मन से लगे रहना चाहिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दिया कि आज्ञाम भगवतो राजन प्रहलादो बलिनास। श्री प्रहलाद महाराज भगवान की आज्ञा को सुन करके वाढ़मि तमल प्रज्ञो, उन्होंने कहा आपकी जो आज्ञा, हाथ जोड़ करके सिर से भगवान की आज्ञा को ग्रहण किए और अपने पौत्र के साथ परिक्रमा किए। परिक्रम आदि पुरुषम सर्वासुर चमुपति पुनतास्तु ज्ञात, भगवान की परिक्रमा किए तीन बार और परिक्रमा करके फिर प्रणाम किए सबके साथ। सारी असुरों की सेना भी थी और बलि महाराज और सब असुर लोग, तो इसके बाद प्रभवेश महाबिलन महावीर में मतलब सुतल लोक में प्रवेश किए। जब बलि महाराज प्रहलाद महाराज के साथ वहां से चले गए तब श्री भगवान शुक्राचार्य से बोले, भगवान ने कहा कि गुरुदेव सभी ब्राह्मणों के साथ आप ऐसा कीजिए कि बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई है वो पूरा हो जाए। ऐसा नियम है कि यदि यज्ञ में बाधा होती है, अपूर्ण हो जाता है, तो यज्ञ करने वाले की हानि होती है। यज्ञ आधा में नहीं छोड़ना चाहिए, पर सवा समेत यज्ञ चल रहा था और बीच में भगवान आ गए, यज्ञ करने वाले को बांधा गया, गाली दिया गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, वो असुर कुछ भाग गए, तो यज्ञ भंग हो रहा था। तो भगवान ने कहा शुक्राचार्य से कि आप गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, तो जो भी यज्ञ में त्रुटि रह गई, कमी हो गई, उसको आप पूरा कर दीजिए। सभा में बोल रहे थे भगवान, सभी ब्राह्मण बैठे थे, तो वहां पर भगवान बोल रहे थे, ब्रह्मन संतनु शिष्य से कर्म छिद्रम वितन्मत। आपका शिष्य बलि कर्म कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, तो इस यज्ञ में जो भी कमी रह गई, छिद्र रह गया, उसको आप सुधार दीजिए। यज्ञ में कोई भी कमी रहती है वो ब्राह्मणों के निर्देशन में ठीक हो जाती है। आप वेद शास्त्र के अनुसार सब जानते हैं, तो अपने शिष्य के यज्ञ में जो भी कमी रह गई है उसे आप पूरा करा दें। इसको सुन करके शुक्राचार्य बोलते हैं, कुतस तत्कर्म वैषम्यम जस्य कर्मे शुभम। जिस कर्म में यज्ञ में यज्ञ के भोक्ता यज्ञपति भगवान की पूजा हुई, तो उस यज्ञ में कमी क्या चीज रह गई? कुछ भी कमी नहीं है। यज्ञ की सफलता तो इसी में है कि भगवान संतुष्ट हो जाए। तो आप तो संतुष्ट हैं इस यज्ञ से, इस यज्ञ में आपने लिया, तीनों लोगों की भूमि लिया, सब कुछ आपको समर्पित किया गया, इससे अच्छा यज्ञ क्या होगा? इसमें कोई कमी नहीं है। कर्म मतलब यज्ञ, यज्ञपति आप हैं, आप कर्मेश्वर हैं, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। इस यज्ञ में सर्वभाव से आपकी पूजा हुई, पूजा हुई, आप प्रसन्न हुए। मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश कलाह कलारह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। किसी यज्ञ में यदि मंत्र पढ़ने में कमी रह गई, या यज्ञ में जो सामान जुटाए जाते हैं, सामान जुटाने में कोई कमी रह गई, यज्ञ के स्थान में कोई कमी रह गई, और कराने वाले ब्राह्मणों में कोई कमी रहा हो, सारी कमी को पूरा कर देता है आपका नाम संकीर्तन। यज्ञ में कोई भी कमी पूरी हो जाती है केवल नाम उच्चारण से, नाम संकीर्तन से। और जहाँ साक्षात आप पूजित हुए तो उसमें कमी क्या रह सकती, आपका नाम कीर्तन करने से ही यज्ञ की कमी दूर हो जाती है। फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं करा देता हूँ, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन करना यही जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है, यही लक्ष्य है। एतत् श्रेय परम पुंसाम यत् तवाज्ञानुपालनम्, आपकी आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा श्रेय है। तो आप आज्ञा देते हैं तो मैं करा देता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। इस जग में आप साक्षात पूजित हुए, मंत्र से तंत्र की दृष्टि से या देश काल पात्र किसी भी वस्तु की कमी से कमी है तो पूरी हो जाती है कीर्तन करने से। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम। यह श्लोक सबको याद कर लेना चाहिए। भगवान की आज्ञा का सम्मान करते हुए उसना ने, जो बहुत शक्तिशाली है, यज्ञ के छिद्र को दोष को समाधान कर दिए सभी विप्रषियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों के साथ। शुक्राचार्य जी यज्ञ को पूरा किए, इस प्रकार बलि महाराज से पृथ्वी ले करके भगवान ने इंद्र को दे दिया। एवं बलिर महिम महाराजन भिक्षित्वा बामनो हरि, भिक्षित्वा भीख मांग करके ददो भ्रात्वे महेंद्राय, अपने भाई महेंद्र को दे दिया। वो स्वर्ग जो शत्रुओं द्वारा छीन लिया गया था इंद्र से, इस अध्याय का नाम है प्रभुपाद जी लिखे हैं, इंद्र को स्वर्ग की पुनः प्राप्ति दे दिया। प्रजापतियों में सबसे श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी, तो वे देवताओं के साथ, ऋषियों के साथ और पितरों के साथ, समस्त मनु महाराज आदि के साथ दक्ष भृगु अंगिरा आदि के साथ और कार्तिकेय अथवा सनत कुमार के साथ, भगवान शिव के साथ, कश्यप मुनि के प्रसन्नता के लिए, माता अदिति की सुख के लिए, प्रेम से सब जीवों के कल्याण के लिए, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सभी लोगों के मंगल के लिए, वामन भगवान को इंद्र पद पर बैठाए, तो सबसे बड़ा पद दिए। ब्रह्मा जी सबके साथ मिल करके भगवान को राज सिंहासन दिया गया, वही असली इंद्र बने, इसीलिए उनका नाम उपेंद्र है। इस जगत का वास्तविक शासक सारे लोगों के, सारे जीवों के और समस्त लोकपालों के हितकारी भगवान वामन देव को सबसे बड़ा पद दिया गया है। समस्त वेदों का कल्याण करने वाले, समस्त देवों का कल्याण करने वाले, समस्त जस श्री सबका मंगल करने वाले श्री भगवान वामन देव। छला या सीबी छला या सीबी क्रमणे बली मद भूत वामन पद नख नीर जनित जनपा केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जब उपेंद्र राजा बने संसार का, स्वर्ग का, तो सभी जीव परम सुखी हो गए, परम आनंद में हो गए। तब सभी देवताओं के साथ इंद्र आगे बढ़े और वे भगवान को ले गए सबसे श्रेष्ठ विमान पर स्वर्ग जाने के लिए। बलि महाराज के यज्ञ के स्थान पर सब समाज जुटा था ना, वहाँ भगवान अवतरित हुए थे। तो इसके बाद भगवान को ले करके आदर के साथ वामन देव को और ब्रह्मा जी से पूछ करके आज्ञा लेकर के इंद्र ले गए अपने भाई को, छोटे भाई को उपेंद्र को स्वर्ग ले गए। वहाँ उनका अभिषेक होगा, राज्य सिंहासन मिलेगा।